शूद्र भी हो सकते हैं कोई बात नहीं, जय कृष्ण तत्कविता से हुआ। इसलिए गुरु जी का पंच परंपरा की कोई महत्ता नहीं रहने पर भी हम उसको संक्षेप में कुछ बतला रहे हैं। गुरु जी बहुत उन्नत वंश में पैदा हुए थे। इनके पिताजी, इनके पितामह, इनके मामा और मातामह सभी उच्च वंश के परिवार के थे और वैष्णव थे। गुरु जी के पिताजी के पिताजी उस समय के बंगाल भर में प्रसिद्ध एक संत के शिष्य थे, इनका नाम
विजय कृष्ण
गोस्वामी था। वो इतने सिद्ध महात्मा थे, पहले योगी थे, पीछे से चैतन्य महाप्रभु के मंत्र इसमें दीक्षित हुए थे संप्रदाय। वो इतने सिद्ध महात्मा थे कि एक समय में ढाका के पास बरिशाल में वो बैठे थे। उनके गुरुजी, उनके पिताजी के गुरुजी, क्या नाम बतलाया,
विजय
कृष्ण गोस्वामी, उन्होंने हटात कहा, देखो देखो विद्यासागर जी जा रहे हैं, ये स्वर्ग में जा रहे हैं, उन्होंने बहुत काम किए हैं और देवता पुष्प उन पर बरसा रहे हैं। तो उनके शिष्यों ने उसी समय में मेदिनीपुर में टेलीग्राम किया, मेदिनीपुर में उनका देहांत हुआ था, मेदिनीपुर में थे वो, बहुत विद्वान थे, संस्कृत के भारतवर्ष में उस समय थे सबसे बड़े विद्वान थे और बड़े समाज सेवक थे, पुण्य कर्म करते थे, सत्कर्म करते थे, सत्कर्मी जिसको कहते हैं वो थे। उन्होंने टेलीग्राम किया तो कहा ठीक उसी समय में, जिसमें उन्होंने कहा था उसी समय उन्होंने स्वीकार किया। तो महापुरुष लोग इन सब चीज लेते हैं, जो कौन कहाँ जा रहा है, कौन कब मर गया या क्या हुआ, जो अच्छे अच्छे लोग, तो उनके कहने से पता लगा जी ठीक उसी समय में हो गए। ये महापुरुष जी के धर्म में आकृष्ट होकर के पीछे से जोग जोगड़ा सब कुछ छोड़ करके और इसमें प्रविष्ट हुए थे, वैष्णव बने थे। उन्हीं के शिष्य हमारे गुरु जी के पिताजी थे, जिनका नाम याद है, जो तो उनके पिताजी उनके शिष्य थे और माता जी उन्हीं के शिष्या थी, इसलिए वैष्णव परिवार के थे। जिस समय उनका जन्म हुआ बड़ी सुंदर
शरदचंद्र
गुह ठाकुर
माता भुवन मोहिनी देवी
और माता जी का नाम भुवन मोहिनी, जिस समय पैदा हुए बड़ी सुंदर, ऐसे कि जैसे जोना की टोका होता है, जुगनू होती है, ऐसे उनसे तेज निकलता था, इसलिए उनका नाम जोना रख दिया। जोना माने ज्योत्सना, भी चंद्र की जैसे ज्योत्सना होती है, ऐसे बड़े सुंदर सुकांत के रूप में वो पैदा हुए। हाँ बोलिए।
Still, if we, I Maharaj is saying, I am describing it. If we throw light on that, his dynasty parampara was very shiny. His father, grandfather, from paternal side, all were very advanced type of Vaishnava. Maharaj is explaining that his grandfather was disciple of a very advanced devotee who was earlier yogi, but later on he accepted Chaitanya Mahaprabhu. His name was Vijay Krishna Goswami. And he was so much advanced and so much learned that once he was sitting nearby Dhaka. Dhaka is nowadays in Bangladesh and probably its capital also.
Capital, yeah.
Yeah. He was sitting there and at that time during...
About 2000 miles far away.
Far away. Medinipur se.
Yeah.
At that time there was a very renowned social leader of India. His name was Vidyasagar. And he was in Medinipur, that social leader, Vidyasagar. And in Dhaka he was sitting, near Dhaka he was sitting, he said, oh look, Vidyasagar is going to heavenly planets. And very soon there was a telegram they received from Medinipur that Vidyasagar has died. So Maharaj is explaining that Vijay Krishna Goswami was so much yogi as well as advanced in Krishna consciousness, and Param Guruji's grandfather was his disciple. Later on his father and mother, name of Param Guruji's father, Sharat Chand Bhuvan Thakur, and mother's name was Bhuvan Mohini Devi. They became disciple of such advanced devotee. When Param Guruji took birth, he was so beautiful and glowing. A glow was coming from his body. Therefore, his name was ascertained Jonah. Jonah means from where the glow is coming on. Jonah is a word derived from words Jyotsna. Jyotsna is the glow of moon which comes. So his name was after that.
इनका स्वभाव अपने मैया के ऊपर में आया। मैया एक जमींदार फैमिली की लड़की थी, बहुत ही अच्छी शासक थी। इनके चार लड़के थे, बड़े लड़के श्रील प्रभुपाद के सन्यासी शिष्य दीक्षित और सन्यासी शिष्य प्रमोद कुमार जी, और पीछे से उनका नाम हुआ
भक्ति
केवल पौलोमी। बहुत ही विद्वान आदमी और वैष्णव, इनके भाषण बड़े सुंदर होते थे, युक्तिपूर्ण होते थे। और दूसरे नंबर पर ये थे, इनको लोग भीम कहते थे और बड़े दयालु स्वभाव के थे। अपने पिताजी की उंगली पकड़ करके जहां पर धर्म सभाएं होती, जहां पर गीता पाठ होता, भागवत का पाठ होता, वहां पर बचपन से जाया करते। उनका स्वाभाविक ये रुचि था। इनकी मैया शासक थी, रूलर थी, बड़ी कठोर थी। कोई भी बच्चे बिगड़ न जाए इसका अपने आप को सबको कंट्रोल में कर रखती थी और सबको अच्छी तरह से पढ़वाती थी। पढ़ी लिखी भी विदुषी महिला थी। एक दिन जब ये स्कूल में पढ़ने लगे, एक दिन ये बहुत रात से लौटे अपने घर में। मैया गठिया लेकर के खड़ी थी शाम से, रात क्यों किया, गंदे लड़कों के साथ में घूमेगा, इसकी बुद्धि खराब हो गई। इन्हें गठिया लेकर के दरवाजे पर खड़ी थी, आएगा तो उसे हम पीटेंगे और पूछेंगे कि। जब ये लौट करके आए करीब करीब 10 बजे रात में, 10 बजे तक खड़ी रही, कुछ ना खाया ना पिया। 10 बजे आए तो उनका हाथ पकड़ लिया, कहाँ था, कहाँ था तुम बतलाओ। ये बतला क्यों नहीं, बतला नहीं रहे थे, चुपचाप खड़े। तुम बतलाएगा ना तभी पिटेंगे, बताओ तुम कहाँ था। उन्होंने कहा मैया देख, हम लोगों ने एक कमिटी बनाया है और हम लोगों के आसपास के गांव में या अपने गांव में जो दुखी महिलाएं हैं, पुरुष हैं, दरिद्र हैं, रोगी होते हैं, हम लोग जो तुम लोग खाने के लिए पैसे हमें देती है जब भी, हम लोग टिफिन के पैसे एकत्र करके रखते हैं, अपने कुछ नहीं खाते हैं और उससे गरीबों की दिन दुखियों की सहायता करते हैं। अभी हाल में गांव में एक बूढ़िया महिला है, उसके पति नहीं है, लड़का नहीं है, उसको घर नहीं है, कुछ नहीं, खाने के लिए भी कुछ नहीं और उसको कलरा हो गया और बहुत बीमार है, मरने मरने हो गई, कोई देखने वाला नहीं था। मैं उसके घर में गया, बेटा ये खाने के लिए नहीं है और मर छटपटा रही है, पानी देने के लिए कोई नहीं। मैं साथ ही साथ में डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर आया, उसके लिए पैसे की व्यवस्था की, औषधि की व्यवस्था की, पथ्य की व्यवस्था की, अपने साथियों को इसके बाद में लगा करके एक दूसरे साथी को बैठा दिया है, वो वहां पर है और मैं अभी घर में आया और थोड़ी देर के बाद में मुझे फिर जाना पड़ेगा उस साथी को छुड़ाने के लिए, जो फिर मैं जाकर के रात में जग करके उसकी सेवा करूंगा। मैया के हाथ से लठिया दी, आंख के आंसू छल छल आए, हमारा बेटा इतना दयाल, मैं इतनी कठोर स्वभाव की और उसको उन्होंने आलिंगन कर लिया, ऐसे दयाल प्रारंभ के जीवन के प्रारंभ से थे। दयाल किसको कहते हैं? जीव दया कृष्ण नाम सर्वधर्म। दया किसको कहते हैं? कोई कपड़ा देना नहीं, कपड़ा देना दयाल का नहीं है, उन्होंने उसको रोगी की सेवा की, वो तो मर जाएगी, किंतु हृदय में दया होनी चाहिए। वैष्णव तो बड़े दयालु होते हैं, लौकिक रूप में भी, पारलौकिक रूप में भी। अभी की जो दया है काम में नहीं आती, फिर जिसको देते हैं वो आपका शत्रु भी हो सकता है और फिर दरिद्र हो जाएगा, फिर मरेगा एक दिन। किंतु परमार्थिक दया क्या है? जिस दया के करने के बाद में फिर किसी दया की जरूरत नहीं। अमन दो उदया दया, उसका बंद नहीं हो सकता है, उसका खराब कोई नहीं होगा। अभी मान लेके किसी की लड़की की आपने शादी करा दी, कुछ दिनों के बाद में आपका शत्रु हो सकता है, जो शत्रु है वो शत्रु मित्र हो सकता है इस दया का, और फिर वो भूखा मर रहा है कुछ दे दो, फिर कुछ दिनों के बाद में फिर वो मांगेगा। किंतु जिसको परमार्थिक दया करो, जो तुम कृष्ण का दास है, एक भी जीव को जो संसार में लगा उसकी एक रुचि को परिवर्तन करके भगवान में लगा दिया जाए, उसका जन्म जन्म जन्तर उसका मंगल होगा, कल्याण हो जाएगा, इसे बढ़कर के कोई दया नहीं। एक भी जीव को यदि आपने किसी प्रकार से उसकी भावना को मोड़ करके भगवान की तरफ में लगा दिया, इसे बढ़कर के संसार विश्व में कोई दया नहीं है, वो फिर जन्म मरण से सदा के लिए बाहर होकर के कृष्ण की चरणों में गोलोक वृंदावन में जाएगा। किंतु ये संसारिक दयाओं का ऐसा ही फल होता है। एक मृग राजा को जानते हैं, उन्होंने करोड़ों करोड़ों गाय दान की, किंतु फल क्या हुआ? किसी ब्राह्मण को संतुष्ट नहीं कर सके और अंत में उनको गिरगिट होकर के आना पड़ा, यही तो दान का फल है। इसलिए गुरु, हमारे गुरु जी पीछे से सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी के यहाँ है और असल दया कहते हैं किसको, इन्होंने बतलाया। और तब भगवत कथा के प्रचार में और गुरु की सेवा में वैष्णव की सेवा में अपना सारा जीवन लगाया। बोलिए
महाराज जी, एक्सप्लेनिंग दैट परम गुरु जी नेचर वाज अपॉन हिज मदर, हिज मदर belong to a Jimidar family. Jimidar who are landlords. They are of administering nature. So she was a very expert administrator and ruler. So a sort of dominator. And Param Guruji's nature was on his mother. She was very much intelligent. She always wanted to control his, her children so that they should not have, they should study well and they should do very good in their life. Param Guruji was from the very beginning very much interested to go to spiritual assemblies. He used to go with his father when he was very young.
Very child.
And child.
His boyhood.
Childhood. When he was in childhood, holding the finger of his father, he used to go to the spiritual assembly and listen to those discussions very carefully. Maharaj is explaining, though he was on his mother, but from the very beginning, his heart was very, very soft. He was full of mercy. Once, what happened that he came very late in night at his house. His mother, who was already strict administrator, she was waiting for him since long time. At about 10 p.m., he did not turn up. She was very much angry and in anxiety also, holding a rod stick in her hand. She was waiting without eating and in anxiety. At about 10 p.m., he came. When he came, she held his hand and chastised him and asked that, tell me where had you been, I will beat you otherwise. You are spoiling your time with playing with a notorious boy. First he could not speak, he remained mum, but when she said that speak otherwise I will beat you, at the time very hesitantly he said, look, we have found a committee of some students, some boys, and there we are collecting some funds. From where are you getting funds? All those funds you give for us eating tiffin, you know tiffin? Pocket money. In English we may call it pocket money. Whatever pocket money you are giving to us, we don't eat from it. We are collecting it. And the purpose of this committee is to serve poor and needy people. Just nearby, there is an old lady. She doesn't have any relative and any person to look after her. She has caught cholera. She is very much sick. So I went to her house. I found that she was crying with pain. I arranged for a doctor for her and medicine. I also collected money and I just gave some medicine to her. I arranged a boy who is looking after her right now, and now I have come here. Probably very soon I will have to go again there. When his mother listened this thing, her heart started bleeding. Tears came out from her eyes. She said, oh, my child is so much merciful. So Maharaj is explaining here very interesting point. He said, what is daya? Daya means mercy. Mercy is not an act that you are performing for any physical betterment of any person. If you give medicine to a person, he will be alright, but finally he has to die. If you give some clothing to some person, he may get relief, but quite temporary, it is not a permanent relief. Maharaj is explaining, in fact, mercy is a thing which resides in heart, can be manifested from the very beginning. So his guru was having mercy in her heart from the very beginning of her his life. And when he came to his guru, at that time he could understand what is the real meaning of mercy. Real of mercy, that you show it, shower it on the living entities for their permanent betterment. If you just change the taste of a single living entity for Krishna, he will be liberated from life and death and will go to Golok Vrindavan. If we conduct such mercy on living entity, this is the real mercy. So already existing mercy in the heart of Param Guruji, that was transformed for the spiritual mercy and he distributed to all.
Honahar Bhagavan ke
bhot
achi kane bala. Jo chote takaude hote hain, उनके लंबे लंबे अच्छे अच्छे हरे भरे पत्ते हों तो समझ लीजिए ये बहुत अच्छा पेड़ हो और फलदार होगा। ऐसे ही जीवन में पहले उस इसको देख करके ये बात कोई समझ सकता है कि ये जीवन में बहुत ही उन्नत व्यक्ति होगा और बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति होगा। इनके जीवन ऐसा है, जीव ने कभी भी स्वार्थ नहीं इनके जीवन में देखा। संतों के जीवन में निस्वार्थ भावना रहती है, पहली तो ये निशानी है। यदि किसी वर्ल्डली चीज में उनका अटैचमेंट हो तो वह संत नहीं हो सकता, देखा जाता है उनके जीवन में। बचपन के प्रारंभ से ही अपने लिए कुछ उन्होंने किया नहीं, यहां तक भी मठ है इनके पास में कभी एक पैसा नहीं रखा, जो कुछ हुआ सब प्रभुपाद की सेवा के लिए लगा दिया। प्रभुपाद जी अपना सारा वेदांत ग्रंथ इनको दिया था, उनको कहते थे तुम डोगला है, डोगला माने मूर्ख, मूर्ख माने इस रूप में नहीं, अपने लिए कुछ करता नहीं। संत लोग अपना कुछ है ही नहीं है, भक्तों के लिए सर्वस्व करते हैं, हरि गुरु वैष्णव की सेवा करते हैं। इसलिए उनके जीवन के प्रारंभ से ही उसमें ऐसा कोई स्वार्थ ही नहीं देखा गया जो अपने लिए कुछ रखे। प्रभुपाद जी के अप्रकट होने पर जितने सन्यासी थे 2-10 लाख रुपया कलेक्शन करके बड़े बड़े मठ बनाए, किंतु हमारे गुरु जी प्रभुपाद जी के अप्रकट होने पर एक पैसा नहीं था, खाली हाथ आए। आज देखो जैसे आप भारतवर्ष में क्या विदेशों तक में सर्वत्र उनके बड़े बड़े मठ और ये सब हो रहे हैं और कितने शिष्य इत्यादि हैं। तो हम लोग भी वैसा नहीं स्वार्थ रूप में हरि गुरु वैष्णव की सेवा करेंगे, अपने लिए नहीं करेंगे, तो ऐसा नहीं होगा। भगवान की बड़ी कृपा अकिंचन देन ही, अकिंचन के ऊपर में भगवान की कृपा होती है। यदि अकिंचन नहीं रहेगा, प्रहलाद महाराज जी ने कहा कि निष्किंचनस्य, उनके चरणों की धूलि से यदि अभिषिक्त नहीं हो गए तब तक हरि भजन नहीं होगा। इसलिए निष्किंचन होना चाहिए, गुरु जी महाराज अंत तक निष्किंचन। जब अप्रकट हो गए उनके पास में एक पैसा हम लोगों ने नहीं पाया, कुछ भी उनके पास नहीं, सब कुछ ऐसे हम लोगों ने भिक्षा से इधर उधर से उनका विरम उत्सव इत्यादि सब कुछ मनाया, एक पैसा भी नहीं। एक बार हमने ये जो कुछ बातें सुनी है गुरु जी के मुख से सुनी है, मैं उनका बड़ा मुंह लगू था, मुलगू समझते हैं, मुलगू मैंने डरता पड़ता नहीं, उनसे सब समय प्रश्न किया था और सारी उनकी सेवाएं कपड़े धोने से लेकर रसोई बनाना दे करके सेवा में करता था उस समय। यहाँ तक कि बहुत सी सेवाएं जो मैं नहीं अपने मुख से कहना चाहता, मैं भी मृत्यु से डरा नहीं उनकी सेवा के लिए, उनके सेवकों के लिए। तो वो उनके जीवन में हमने बहुत से कुछ जो कुछ वो पहले का था वो मैंने उनके मुख से सुना। दौलतपुर कॉलेज में पहले वो कलकत्ते के उत्तरपाड़ा कॉलेज में वो भर्ती थे, उस समय में अभी तक गुरु जी से अपने नहीं मिले थे। वहां पर उनकी एक पिसी माँ थी, मैंने बुआ जी थी, उनका नाम सरोज वासिनी था, बहुत ही उन्नत श्रेणी की विदुषी महिला थी, बहुत तत्वज्ञ, और सब सन्यासी लोग उनको प्रणाम करते थे, महिला होने पर भी सब महिला लोग उनको प्रणाम करते थे, दीदी दीदी कहा करते थे, और बहुत विद्वान, समस्त सिद्धांतों को जानने वाले। और कैसी थी, कवि थी, क्षण मात्र में सारी कविताएं नई नई बनाती थी। प्रभुपाद के जीवन में हमारे गुरु जी के संबंध में, यहाँ तक कि बामन महाराज जी के संबंध में, हम लोगों के संबंध में कविताएं सब बना करके साथ ही साथ में वो बना दी थी। तो वो सरोज पिसी माने प्रभुपाद के संबंध में बहुत कुछ बतलाया और उनको अपने साथ लेकर के प्रभुपाद जी के साथ पास में मायापुर में ले आए।
प्रभुपाद जी की शिष्या थी,
प्रभुपाद जी की शिष्या थी, पहली शिष्या थी। प्रभुपाद महिलाओं को मंत्र नहीं देते थे, उनको दीक्षा नहीं देते थे। तो एक बार वो आई उन्होंने कहा स्त्रियों में क्या स्त्रियां क्या जीव नहीं है, किस दोष से उनको दीक्षा आप नहीं देते हैं, किस क्यों, क्या उनका कल्याण नहीं होना है? तो उनकी बातों को सुन करके
उनका जीव नहीं है, उनका जीव नहीं है, उनका भजन करने का
क्या, उनको भजन करने का अधिकार नहीं है, क्या उनको भजन करने का स्त्री का अधिकार नहीं है? प्रभुपाद इसका उत्तर नहीं दे सके और बड़े प्रसन्न होकर के सबसे पहली बार उनको शिष्य के रूप में प्रभुपाद को हमारे गुरु जी को वही लेकर के आई। गुरु जी उनको बहुत आदर करते थे, उनकी प्रत्येक बात को मानते थे। गुरु जी से इनके भेंट होने पर गुरु जी प्रभुपाद जी बड़े प्रसन्न हुए। यह बात 1916 का गुरु सुंदर
बोला
1916। इसके बाद में बीच बीच में आने लग गए, हरिनाम उन्होंने 1916 में लिया और इसके बाद में कॉलेज में पढ़ते थे, उत्तर कॉलेज का उसी समय में बड़े बड़े अपने प्रिंसिपल से और बड़े बड़े प्रोफेसर से बात होती थी उनकी। उस समय में एमए में बीए में चैतन्य चरितामृत था, गवर्नमेंट के द्वारा ये क्या करते हैं रिकॉग्नाइज था चैतन्य चरितामृत सिलेबस में था, उसका पहला पार्ट आदि खंड था बीए में और बाकी था एमए में। तो उसमें पहले खंड में जब ये पढ़ते थे तो उसमें है वदन्ति तत्त्व विदः तत्त्वम् यद् ज्ञानम् अद्वयम्। और ते ज्ञान का किसको कहते हैं, और दूसरा जीवन स्वरूप है नित्य कृष्णदास कृष्ण तटस्था शक्ति भेदा भेद। वो लोग इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर सके जब भेदा भेद प्रकाश क्या है और जीव का स्वरूप क्या है, गुरु जी से पूछा तो उनको स्पष्ट करके बतलाया प्रभुपाद जी का विचार। अद्वैत ज्ञान किसको कहते हैं, अभी हम बतलाएंगे तो बहुत से लोग पूछेंगे तो कोई बतला भी नहीं सकते। अद्वैत ज्ञान कौन है, कृष्ण ही अद्वैत ज्ञान अकेले हैं, किंतु अकेले में कैसा, बहुत को लेकर के एक अंक है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी एंड डाइवर्सिटी इन यूनिटी। कृष्ण कहने से जीव जगत उनके परिकर इत्यादि सब कुछ मालूम होता है, सब मिला करके ख ग वा भ अपने विश्व ब्रह्मांड के भर्ता पाप, यदि ब्रह्मांड रहे तब भर्ता किसके रहे। और केवल यही जगत नहीं, गोलोक वृंदावन वैकुंठ इत्यादि सब सबके लिए भरता है, भरण पोषण करने वाले और गौ बने उनके नियामक हैं, नियामक बने संचालक विश्व सारे इस विश्व का उस विश्व का तटस्थ शक्ति के से उत्पन्न ये सब का वो मूल संचालक। वह अपने प्राणी में जो निवास करते हैं, अपने प्राणी जिनमें निवास करते हैं वो भगवत शब्द कृष्ण की शक्ति है। विशेष करके इतनी शक्तियां चेत शक्ति जीव शक्ति है, चेत शक्ति से सारा वैकुंठ जगत प्रकट हुआ है। नंद जसोदा वृंदावन के सारे परिकर उनसे प्रकट हुए और तटस्था शक्ति से हम जैसे जीव और ये माया शक्ति से सारे विश्व ब्रह्मांड एक ही नहीं लाखों कोटि विश्व ब्रह्मांड प्रकट में है, ये सब मिला करके भगवत शब्द बात है। इन सब को मिला करके कृष्ण एक है, ये जगत वही एकमात्र अद्वितीय पर तत्व है अद्वैत। उनकी शक्ति से सारे विश्व में है, उनकी शक्ति से सारे वैकुंठ जगत की सारी चीजें हुई है और अंत में उन्हीं से ये सारा विश्व ब्रह्मांड है, इसलिए कृष्ण पर तत्व है। इस वक्त के आश्चर्यचकित लोग हो गए तटस्था शक्ति क्या है, कोई धारणा उनकी नहीं थी, गुरु जी ने उनको बतलाया। इस तरह से जभी जभी कुछ चैतन्य चैतन्य के कुछ कठिन सिद्धांत आते थे तो वो लोग कभी भी उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते थे, गुरु महाराज जी उनको बताया। गुरु जी ने सोचा इनके पास में मरा करके क्या सीखेंगे, जब प्रिंसिपल को और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जिसके वो जो पढ़ते थे, जब उन लोगों को मैं ही पढ़ाता हूँ तो उनसे क्या बात होगी, पढ़ते उनसे हमारा कुछ लाभ नहीं है, इस जड़ विद्या के सीखने से कुछ भी लाभ नहीं है। जड़ विद्या जो तो माया रोहिथो जीवों के परे एक गाथा, ये जड़ विद्या का कुछ भी मूल्य नहीं है। वो क्या करती है, जीव को गधा बना देती है।
श्री कृष्ण भजन में बाधा,
श्री कृष्ण के भजन में ये जड़ विद्या बाधा होती है। इसलिए जड़ विद्या के ऊपर में निर्भर नहीं रहना चाहिए। परमात्मिक विद्या जो अक्षर तत्व है, ब्रह्म तत्व, भव तत्व, भक्ति तत्व, इस पर निर्भर रहना चाहिए। हम देखते हैं कि हरिदास ठाकुर कौन से कॉलेज में गए, कौन से कॉलेज में, किसी भी कॉलेज में नहीं गए। श्रीनिवास आचार्य कौन से कॉलेज में गए, हमारे गौर किशोर महाराज कौन नहीं जाते थे, और बड़े बड़े विद्वान प्रभुपाद जैसे विश्वविजयी व्यक्ति उनके चरणों में नतमस्तक हुए, ये कौन सी विद्या है, यही परमात्मा की विद्या है। यदि कृष्ण भक्ति है तो सभी कुछ विद्या है, और कृष्ण भक्ति नहीं है तो कोई भी विद्या नहीं है। ऐसा सोच करके उन्होंने कॉलेज में जाना बंद कर दिया और संपूर्ण रूप से 1919 ईस्वी में प्रभुपाद के चरणों में अपने को आत्मविकृत कर दिया। प्रभुपाद बड़े
महाराज ये है स्टैंडर्ड रिकॉर्ड विद रिसाइटेशन ऑफ वेरी फेमस इंडियन फ्रेज ऑन हार विनवान के बौद्ध चिकने पर कमिंग इवेंट्स कास्ट देयर शैडो बिफोर, आई थिंक दिस इज अ ट्रांसलेशन इन इंग्लिश वी जनरली डू। Just as good plant which has very nice leaves, we can have idea that it will become a good tree. Similarly, when we see the good things in a child, we can see that how he will become a great personality. Similarly, Param Guruji Maharaj, he was displaying very wonderful qualities from his childhood. What are those? The most quality which he was having from his childhood, when he was very much simple, detached, fully detached from the material objects. He never had any desire to collect any material thing for himself, for his enjoyment, for his pleasure. So Prabhupada used to call him that you are very, in Hindi, I think the exact English exact word is very simple, Sida Sada, who can be very easily be fooled, because he doesn't keep anything for himself. And Maharaj is saying it was seen, then when Srila Prabhupada disappeared and went into his Nidila, at that time many other sannyasis of mutt, they had many money, rupees, and they established their own mutt. But Param Guruji had nothing with him. He was penniless and he started his this mutt without any money at all. He was akinchan. Akinchan means who does not have anything material in his life. Only these people can do real bhakti. Otherwise bhakti cannot be done. It is said in the scripture that even if one wants to advance in Krishna consciousness, he should bathe in the dust of such akinchan people. Maharaji is explaining that when Guruji entered into Nitya Leela, at that time also there was no money. He had no money at all. And somehow or other, everything, our samadhi and these things, his disciples conducted. But he left over with no any money. tell you one thing, that he was very much close to his guru, Gurudev. He is using in Hindi the word Muhulaku. He used to talk to him very
frankly,
intimately, and without any
hesitation.
Gap. Vishnu Bhava with Vaikal. At the same time, he was doing his very intimate services also. He was washing his clothes, he was preparing his prasad, and many other such services which Maharaj said that I may not be able to explain also, he was doing. And he did all those services for which his life was also at stake for his Guruji, to serve his disciples and Guruji directly. So, because of such services, he became so close to his Guru, Guruji, that he used to talk very frankly. And Param Guruji used to tell him many things. Maharaj said, whatever I am telling to you are those things which I have heard from my Guru Maharaj. So, Param Guruji, when he was studying in Calcutta, he was studying graduation in college in Calcutta. At that time, his aunt, Bhuva, she is called Pisima. Her name was
Sarojvasini Devi.
Sarojvasini Devi. She was very learned lady. And even many sannyasis used to vote before her. She was intelligent and poetic. Even in the glory of Prabhupada and his disciples, she has prepared many poems. She was first lady disciple of Srila Prabhupada. Before that, Srila Prabhupada never gave initiation to any lady. And then she went, she said that, I intend to ask you a question, that are ladies not living entities? Do they have no right to enter into bhajan? So when Prabhupada heard these things from Pisima, at the time he gave her initiation. She took Srila Prabhupada to her nephew, to Srila Prabhupada. When Param Guruji met Srila Prabhupada first time, at that time he was very much pleased, as well as Prabhupada was also very much pleased. 1916, first time they met. He took Harinam and he learned all the scriptures very fast in guidance of Srila Prabhupada. Maharaj is explaining at that time in Calcutta College, in graduation and post-graduation, Chaitanya Charitamrita was in syllabus. Adi Lila was being taught in graduation and Anta Lila may be taught in post-graduation. Then Maharaj is saying that principals and head of the department of those colleges, they used to get stuck up in many things of the Charitamrita, especially when the question used to come about Advaita Gyan Tattva and Veda Bhed Prakash, Tathastha Shakti. These things were not clear to these people also. At that time, Param Guruji used to explain that what does it mean by Advaita. Maharaj has explained to some extent. He was saying that most of us may also be not knowing it exactly. It's a very vast subject. But in nutshell, Advaita means unity in diversity and diversity in unity. When we say Krishna, that Krishna is not alone. So Krishna is alone, but he is with all his potencies. And all his potencies are also not separate and discrete. Because they all belong to Krishna, so they are one in diversity. And this thing is to be understood. Bhagavan means, Maharaj is saying, who bha means who looks after and who feeds. And va means who controls. What does he control? He controls material world, he controls the spiritual world, and he controls the marginal potencies and our potencies. Va means who lives in even every living entity and in whom every living entity lives. So this way, he is controller of all the potencies, 10 potencies which look after world. The Rasa potency, marginal potency, which is looking after all living entities, and external potency, which is looking after all these millions of universes. So, Advaita means sum total of everything, and then one. This is Advaita. Balaji is explaining, when Param Guruji was thinking that even principal is learning from me, even head of the department is learning from me, what is use of my studying here, where I need to teach them? So I think this is Jalvidya. Jalvidya is sometimes obstacle in bhajan. So I should not get this obstacle in my life. He gave up his college life, and in 1919 he totally surrendered to his Guruji, and he said that I want to learn the spiritual knowledge. I don't understand where Srivast Acharya has taken the graduation degree. He had not gone to any college. Gaurakishore Babaji has not attended any college. But before them, many great learned persons, like Srila Prabhupada, he bowed down before Gaurakishore Babaji Maharaj. So the real education is spiritual education, which is called real Vidya.
एक समय की बात है, मैं संक्षेप में दो एक बातें बताऊं। एक समय की बात है, गुरु जी मायापुर में प्रभुपाद जी के पास में थे, उनकी मैया ने एक पत्र लिखा और वो पत्र प्रभुपाद जी के नाम से था। प्रभुपाद जी के पास में पत्र लिखा, प्रभुपाद जी ने पत्र पढ़ने के बाद में विनोद तिहारी ब्रह्मचारी को अपने पास में बुलाया और उनसे बोले, देखो तुम्हारी भैया का ये पत्र आया है, तुम्हारे पीरा में वो मर रही है और उसका अंतिम पत्र है, वो तुमको एक बार देखने ना चाहती है, सब समय विनोद विनोद करती है, कहते कहते वो मरने वाली है, इसलिए एक बार उनसे प्रार्थना किया है कि मैं उनको भेजूं और वो घर में मैया के पास में एक बार चेक करके चला। उन्होंने विनोद को बुलाया और कहा, तुम्हारी मैया का पत्र आया है, तुम घर में जाओ और मैया से चेक करके चले आओ। और वो भी बहुत बीमार आदमी चले गए। उन्होंने गुरु जी को अपने पास से किराया का पैसा दिया और हमारे गुरु जी वहां से चले आए। जब शाम हो गई तो प्रभुपाद ने दूसरों से पूछा, अरे विनोद को मैंने कहा था अपनी भैया को पास में जाने के लिए, वो गया कि देखा हो तो देखो कि उन्होंने देखा एक कोने में बैठ करके हरिनाम कर रहे हैं, बड़ी मुश्किल से पता लगा था। प्रभुपाद ने उनको बुलवाया, तुमने कहा कि अपनी पूरी भैया और मर रही है, विनोद विनोद कर रही है, तुम जाओ एक बार भेंट कराओ, तुम क्यों नहीं गए? तो कुछ नहीं बोल रहे, दो तीन बार कुछ नहीं पर बतलाया कि गुरु जी कोटि कोटि जन्मों के बाद में आप जैसे गुरु जी हैं और मैं समझता हूं कि आपके मिलने से हमारा जीवन सफल हो रहा है। मैं कुछ भगवत तत्व समझ रहा हूं और भजन करने की इच्छा रहा हूं। आज मैं लौट करके मैया के पास में जाऊं और मैया यदि कहेगी कि बेटा अब मैं मर रही हूं, अब तुम्हें एक बात करना, हमारी अंतिम अभिलाषा है कि तुम घर में रहकर विवाह शादी करते थे, घर देखो, नहीं तो कर्म हमारा बर्बाद हो जाएगा, मैं अंतिम यही अभिलाषा। तो मैं समय कह क्या करूंगा, मैं उसकी अभी अंतिम अभिलाषा पूरा करने के लिए घर में विवाह शादी करके अपना सारा जीवन अनंत जीवन में बर्बाद कर दूंगा। आप यदि कहिए तो आप देखिए, प्रभुपाद जी के आंखों में आंसू आ गए। कहने यही जीवन कुछ बड़े प्रसन्न हुए, माता पिता जन्मे जन्मे